का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव की लिखी कहानी पहाड़ की एक रात। उस पहाड़ी कस्बे का नाम सोनवल था, अविनाश उसे सोनल कहता था। दरअसल सोनम एक लड़की का नाम था जिससे उसकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। इश्क विश्क हुआ, फिर वे एक दूसरे को भूल गए। अविनाश इस नाम की याद को भुला नहीं सका। वह प्रेम मौसम की पहली बारिश की तरह था जिसकी सौंधी गंध उसे अब भी बेचैन करती थी। उसे एक दूसरी लड़की की याद आती थी जो सहजनवा कस्बे को सजनवा कहकर पुकारती थी। यह उन दिनों के दिलचस्प खेल थे जो उस उम्र के लोग अक्सर खेला करते थे। अविनाश को यह पहाड़ी कस्बा अत्यंत प्रिय था। जब कभी वह रोजमर्रा के जीवन से उबता, वह सोनवल की राह थाम लेता था। यह कस्बा शहर होने के लिए बेचैन था। उसे डर था जैसे यह कस्बा शहर में तब्दील होगा वैसे ही इस कस्बे की मौलिकता विदा हो जाएगी। शहर में बाहरी पूंजी और हथियारों की आमद हो जाएगी। पुराने मकान की जगह भव्य इमारतों की तामीर शुरू हो जाएगी। शहर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा और शहर की मूल आवाज भयानक शोर में दब जाएगी। इस कस्बे की स्त्रियां काठ के पुल और संतरे उसे बहुत पसंद थे। स्त्रियां गोल मटोल और मादक होती थी। जरा सी धूप हुई वे अपने रंग बिरंगे छाते निकाल लेती थी। उनके पीछे ऊन के गोलों की तरह बच्चे ढुलकते हुए चलते रहते थे। स्त्रियों के चलने में एक लय होती थी, वे छोटे छोटे कदमों से डग भरती थी। इन स्त्रियों को देखकर अविनाश को लगता था कि सुडौलता की कल्पना इन्हीं स्त्रियों से आई होगी। इस कस्बे की दूसरी मशहूर चीज यहां के संतरे थे। संतरे जंगल में पैदा होते थे, वे स्वाद में थोड़े खटलुस होते थे। एक फांक मुंह में रखो तो मुंह रस से भर जाए। संतरे जब पकते थे उसकी गंध कस्बे तक पहुंच जाती थी। औरतें खूब संतरे खाती थी, उनकी देह से संतरों की खुशबू आती थी। स्त्रियों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता था, छिछोरे किस्म के लड़के उनके पीछे लग जाते थे। जो भी इस कस्बे में आता वह काठ के पुल को कभी नहीं भूल पाता। अविनाश इस पुल के कई चक्कर लगाता। यह पुल बच्चों को बहुत पसंद था। जैसे बच्चे पुल पर चढ़ते यह पुल झूले की तरह हिलने लगता था। बच्चे इस पुल को दिन में कई बार पार करते। उम्र दराज लोग इस पुल को पार करते हुए डरते थे। उन्हें यह भय था कहीं यह पुल टूटकर नदी में ना गिर जाए। अविनाश इस पुल से दूर तक नदी को देखता रहता था। वह पहाड़ से आने वाली हवाओं के अपने फेफड़े के भीतर भरता रहता था। यह नदी दूर पहाड़ों से आती थी। नदी के कल कल की आवाज दिन में नहीं सुनाई पड़ती थी, लेकिन रात के प्रहर में बहते हुए पानी से जल तरंग की आवाज आती थी। अविनाश रात में नदी के पास पहुंचता था। नदी का अपूर्व संगीत उसकी आत्मा में उतरने लगता था। यह नदी कस्बे के बीचों बीच बहती थी। नदी को पार करने के लिए काट के दो पुल थे। पिछली बार जब अविनाश यहां आया था उसने देखा नदी पर आधुनिक पुल बन रहा है। इस पुल के बनने के बाद काठ के पुल को गिरा दिया जाएगा। इस तरह तो कस्बे की शिनाख्त मिटा दी जाएगी, पुल इतिहास बन जाएगा। अविनाश परिवर्तन के विरुद्ध नहीं था। वह चाहता था कि कस्बे के प्रतीक चिन्हों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। जो लोग पुल बना रहे थे उनकी शक्लें हिंसक थी, जैसे आतताइयों और लुटेरों की होती है। दरअसल वे बर्बर ही थे जो उस कस्बे में अपनी आवारा पूंजी के साथ दाखिल हुए थे। इस बार वह शहर में अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसका दोस्त विकास था। अविनाश ने उसके सामने कुछ शर्तें रख दी थी, मसलन वह इस यात्रा को आरामदेह मानकर ना चले। यह यात्रा नहीं एक एडवेंचर होगा। अविनाश हर यात्रा को रोमांचक बना देता था, इसीलिए लोग उसके साथ जाने से घबराते थे। अविनाश ने यह भी हिदायत दी कि सबसे कम कपड़े साथ हों, किसी फैशन प्रतियोगिता में नहीं जाना है। विकास ने अविनाश की यह शर्त कबूल कर ली। बस दो छोटे छोटे बैग तैयार किए गए, जरूरत की चीज़ें रखी गईं, बस इतना ही सामान था जितना आसानी से कंधे पर ढोया जा सके और यात्रा बाधित ना हो। अविनाश और विकास दोपहर में सोनवल पहुंच चुके थे। अविनाश का परिचित होटल यात्री निवास था, दोनों ने वहीं डेरा डाला। होटल का स्टाफ उसे खूब जानता था, वह जब भी सोनवल आता इसी होटल में ठहरता था। होटल के तीन तरफ जंगल पहाड़ साफ दिखाई देते थे, जैसे वे खिड़की खोलते हवा का एक झोंका कमरे में दस्तक दे जाता। विकास अपनी कमर सीधी कर रहा था। अविनाश ने कहा, गुरु उठो, अब हमें एडवेंचर पर निकलना है। कैसा एडवेंचर? विकास ने पूछा। बस आधे घंटे में एक बैग में जांघिया तौलिया टूथपेस्ट आदि रख लो। विकास वचनबद्ध था, जैसा अविनाश ने कहा उसने वैसा ही किया। कॉफी पीने के बाद अविनाश बस स्टेशन की ओर रवाना हुआ। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, वह बस की खिड़की के पास बैठ गया। खिड़की से दृश्य दिखाई देते हैं, पहाड़ जंगल आदमी के साथ साथ चलते हैं। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाना है? 100 रुपए का नोट कंडक्टर को देते हुए अविनाश ने कहा, ये पैसे रखो, जहां कहूंगा उतार देना। कंडक्टर ने अविनाश की ओर संदेह से देखा। उसने सोचा होगा, हाँ जी पगलैट आदमी है, इस आदमी को पता नहीं कहाँ जाना है। खैर उसे पैसे से काम था, सो मिल गया, कोई कहीं भी जाए उसका क्या। सड़क सकरी थी, सड़क पर जगह जगह गड्ढे थे, बस पुरातन थी, उसके भीतर से खड़ खड़ की आवाज आ रही थी। बस बिगड़े हुए ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बज रही थी। कुछ मुसाफिर उसके धुन में सिर हिला रहे थे। और संगीत का क्या, वह तो कहीं भी पैदा हो सकता है, बस उसे महसूस करने की ही तो जरूरत है। बस से 1 घंटे का सफर तय हो गया था। बस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, बीच में कोई गांव गिराव नहीं पड़ा। सूर्य की रोशनी भी अब कम हो रही थी, कभी भी सूरज का डूबता हुआ गोला दिखाई पड़ सकता था। परिंदों का झुंड अपने अपने घोंसलों की दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। आगे गांव आने वाला था। जैसे ही गांव के पास बस पहुंची, अविनाश ने कंडक्टर से कहा, बस यहीं उतार दो। कंडक्टर ने चौंक कर उन दोनों को देखा और ड्राइवर से कहा, भैया दो सवारी यहां उतरेंगी। यह पहाड़ का एक गांव था। चूंकि यह सड़क पर था इसलिए कुछ लोगों ने चाय की दुकानें खोल रखी थी। इस दुकानों पर दैनिक जीवन की कुछ वस्तुएं रखी हुई थी। अविनाश और विकास एक चट्टान पर बैठ गए। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में रात गुजारनी थी, यही उनका एडवेंचर था। दोनों ने गांव का एक चक्कर लगाया, यहां कोई होटल और रहने की जगह नहीं थी। अब उन दोनों के पास दो समस्याएं थी, कहां रुका जाए और क्या खाया जाए। वे दोनों एक दुकान पर पहुंचे, वहां ढिबरी जल रही थी, अंगीठी के धुएं झोपड़ी में फैल रहे थे। दुकान पर औरत बैठी हुई थी। अविनाश ने पूछा, क्या यहां खाने को कुछ मिल सकता है? नहीं भैया, यहां खाने को कुछ नहीं मिल सकता, बस चाय ब्रेड और ऑमलेट मिल सकता है। उन दोनों के चेहरे खिल गए। खाने का इंतजाम तो हो चुका था, बस अब सोने की जगह चाहिए। अविनाश ने उस औरत से पूछा, क्या लोग रात में यहीं रहते हैं? नहीं भैया, अभी कुछ देर में अपनी दुकानें बंद करने के बाद अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, पूरा गांव खाली हो जाएगा। क्या यह चौकी को आप झोपड़े के भीतर बंद करके जाएंगी? नहीं, यह चौकी तो हर मौसम में बाहर रहती है, यह भारी है, कौन इसे बाहर भीतर करे। पर आप लोग यहां क्यों रुके हैं? बस यूं ही। अविनाश सीटी बजाने लगा, या उसकी पुरानी आदत थी, जब किसी समस्या का हल हो जाता वह सीटी बजाने लगता था। अरे ओ फिलासफर की औलाद, यहां मुसीबत में पड़े हुए हैं और तुम सीटी बजा रहे हो? विकास ने कहा। अरे सारी मुसीबत दूर हो गई, अब इस चौकी को हम अपना बिछौना बना लेंगे, नीचे जमीन है ऊपर आकाश, अभी थोड़ी देर में चांद उगाएगा, देखना यह पहाड़ की रात हमारे लिए एक यादगार रात होगी। एक पैकेट ब्रेड और 4 बतख के अंडों का ऑमलेट खाकर वे तृप्त हो चुके थे। भूख अच्छी हो तो हर चीज स्वादिष्ट ही लगती है। जंगल की ओट से चांद बाहर आ चुका था। नीले आसमान में उसके प्रभाव मंडल का विस्तार हो रहा था, सन्नाटा घना हो रहा था। झींगुरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई घुंघरू बज रहे हों। चौकी पर वे दोनों अपने हाथ का तकिया लगाकर सो रहे थे। उन्हें नहीं पता लगा कि उन्हें कब नींद आ गई। सुबह उठे तो वे तरोताजा थे। इतनी अच्छी नींद घर के बिस्तर पर भी तो नहीं आती थी। आधी रात करवट बदलने में गुजर जाती थी। विकास ने अविनाश को धन्यवाद देते हुए कहा, पहाड़ पर इतनी अच्छी नींद याद रहेगी मेरे दोस्त। वे दोनों अब सड़क पर निकल चुके थे। अभी आवाजाही शुरू हो जाएगी, बसों के आने जाने का क्रम शुरू हो जाएगा। परिंदे सुबह के पहले जाग चुके थे, वे गा रहे थे। 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें झरना दिखाई दिया। झरने में हल्का सा शोर था। झरना सड़क से थोड़ा किनारे था। झरने के पास साबुन के टुकड़े, शैंपू के पैकेट बिखरे पड़े हुए थे। इसका मतलब यह था कि यहाँ लोग नहाने के लिए आते थे। झरने का पानी साफ शफाफ था। उसके गिरने का शोर दूर से सुनाई दे रहा था। जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ पानी के गिरने की जगह बन गई थी। अविनाश झरने को देखकर मुक्त हो गया। वे दोनों बारी बारी से झरने के नीचे उतर गए। पीठ पर पानी के गिरने से गुदगुदी हो रही थी। पानी खूब ठंडा था, जैसे वह बर्फ के पहाड़ों से आ रहा हो। वे देर तक नहाते रहे। नहाने के बाद वे दोनों पंख की तरह हलके हो गए थे। सारी थकान उलझी हो गई थी। थोड़ी सी कोशिश करते तो वे उड़ भी सकते थे। बसों की आवाजाही भी अब शुरू हो गई थी। सामने आती हुई बस को हाथ दिया और बस रुक गई। 1 घंटे में वे सोनवल पहुंच चुके थे। बस स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें बियर की तलब हुई। वे किसी ऐसे ठिकाने की खोज में थे जहां इत्मीनान से 1 घंटा गुजारा जा सके। वे सड़क से एक गली में आ चुके थे। अविनाश को एक दुकान दिखाई दी जहां 2 लड़कियां चहक रही थी। उनके बाल कंधों पर छितरे हुए थे। अभी थोड़ी देर में जब बाल सूख जाएंगे उन्हें करीने से बांध लिया जाएगा। अच्छा यह होता कि वे बंधन मुक्त होते और चेहरे पर उड़ते रहते। वे दोनों दुकान पर पहुंच चुके थे। अविनाश ने पूछा, क्या यहां बियर मिल सकती है?
जरूर सर, आइए। क्या बैठने की जगह है? दूसरा सवाल विकास ने पूछा।
इठलाती हुई लड़की ने कहा, पहले आइए तो सर, सब इंतजाम हो जाएगा। दुकान पर बैठकर वे पीना नहीं चाहते थे। लड़कियों ने उनके लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। ड्राइंग रूम सुरुचिपूर्ण था। एक फोटो में वे दोनों लड़कियां गलबहियां डाले हंस रही थीं और दूसरी फोटो पर फूलमाला चढ़ी हुई थी, या शायद उनके पिता की तस्वीर थी। मेज पर बियर की बोतल और बतख के अंडों की भुर्जी और नमकीन सज गई थी। दोनों गिलास झांग से उफन गई थी, जिसे देखकर उन्हें उम्दा सा ख्याल आया। पहली गिलास में कंठ भीग चुका था। अब अविनाश को सिगरेट पीने की इच्छा हुई। उसने मेज पर हल्की सी थाप दी। अगले क्षण लड़की हाजिर थी। 2 सिगरेट आ गए। शायद वह विदेशी सिगरेट थी। उसके धुएं में खुशबू थी। अब दूसरी गिलास भर चुकी थी। कंठ भीगने के साथ तर हो गया था। वे नशे के हल्के जुनून में आ गए थे। दूसरी सिगरेट पहली सिगरेट की तरह मंगाई गई, लेकिन इस बार दूसरी लड़की थी। जिस गति से वे बियर पी रहे थे उस हिसाब से 2 या 3 सिगरेट जरूर पी जानी थी। विकास ने अविनाश से मूर्खों की तरह सवाल पूछ लिया, बार बार सिगरेट मंगाने से अच्छा है एक पैकेट मंगा लिया जाए। आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। एक एक करके सिगरेट मंगाने का मजा अलग है। इसी बहाने वे हमारे पास आएंगी और हम उन्हें देखने का सुख उठा सकेंगे। विकास, तुम्हारे भीतर सौंदर्य बोध की कमी है। तुम्हें पता नहीं वे जब आती हैं हम भीतर से कितने खुश हो जाते हैं। यू आर ग्रेट माई डियर अविनाश। सौंदर्य बोध की इस प्रक्रिया में 5 गिलास खाली हो चुके थे। अविनाश की इच्छा थी कि वह इन लड़कियों के बारे में जाने। लड़कियों को वह निष्कलुष दृष्टि से देखता था।
उसके अंदर कोई पाप नहीं था। सौंदर्य को देखने का यही निरापद तरीका था। जब आखिरी बार पहली लड़की आई तो उसने उनके बारे में पूछा। पता चला वे दोनों पास के स्कूलों में पढ़ाती थी। वह रिसर्च कर रही थी और दूसरी वाली मनोविज्ञान से MA। एक दो घंटे कैसे बीत गए उन्हें पता नहीं चला। अविनाश ने उन्हें धन्यवाद दिया और लड़कियों ने दोबारा आने का न्योता। इन दो घंटों में वे अवर्चनीय अनुभवों से गुजरे थे। कभी कभी जिंदगी के कुछ लम्हे वर्षों पर भारी पड़ जाते हैं। वे दोनों उस दुकान से नहीं, एक दृश्य से अनुपस्थित हो रहे थे। थोड़ी दूर आगे के रास्ते पर चलने के बाद मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो विदा में चारों हाथ हिल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे स्वप्निल श्रीवास्तव की लिखी कहानी पहाड़ की एक रात। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।